खुदावंद के जलाली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें, अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें और उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार हों, क्योंकि ये वक्त है कि उसका कलाम सुने और अपनी सारी तवज्जो को उसकी तरफ लगाएंगे, अपनी सारी फिक्रों को उसके हाथों में देंगे ताकि उसका कलाम सीखने वाले और समझने वाले बने। अगर हमारी रफाकत में कोई भी रुकावट है तो उसके सामने शख्सी तौर पर अपनी कमी कमजोरियों का इकरार करें, क्योंकि ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम रूहुल कुद्दस की मामूरी में मामूर हों। इफिसियों 5:18 आयत के मुताबिक और 1 यूहन्ना 1:9 के मुताबिक। सो इस बात को जहन में रखते हुए खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो कि वो वक्त आता है जैसे तूने कहा कि अब ही है कि तेरे सच्चे प्रस्तार तेरी प्रस्तुति शुरू और सच्चाई से करेंगे और तू अपने लिए खुदा बाप ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम जिंदा और मौसर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बांध बांध और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और हर एक के दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। कादरे मुतलक खुदा, तेरे बेटे मसीह यसु के लिए, जो खुदा उन खुदा जिंदगी की सांस, जो तेरा अलहाम है, हमें इसीलिए वो नमूना के तौर पर दिया गया कि हम तालीम उससे सीखें और हमें भी सलाह हो, हमें तरबियत हासिल हो ताकि इस जमीन पर तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बने। सो आज के कलाम के हिस्सा को ले खुदा बाप, हम सब की कमियों कमजोरियों में खुदावंद अपने कलाम के तलवार से खुदावंद उन सारे लोथनों को, उन सारी कमजोरियों को दिन ब दिन काटता जा, ताकि हम तेरे बेटे की पहचान और तेरे बेटे की सूरत पर ढलते जाएं। कलीसिया में जो भी कोई किसी कमी कमजोरी मुश्किल का सामना कर रहा है, खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से उन्हें खुदावंद खुदा हिकमत और गनाई और कुवत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए नामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 12वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, बस उसने कहा कि एक अमीर दूरदराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जबानी कहला भेजा के हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेने देने से क्या क्या कमाया। इससे पहले कि हम आगे चलें, जैसा कि हम सीख रहे हैं इस तमसील में से, जो अमीर आदमी खुदावंद यीशु मसीह है, दूरदराज मुल्क को जाना यानी कि आसमान पर उठाया गया और फिर बादशाही हासिल करके आना यानी कि यीशु मसीह जब इस जमीन पर गैर ईमानदारों की अदालत करने के लिए आएगा और दूसरी मौत का लोग सामना करेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रद्द किया, और यह है यीशु मसीह की बादशाही जमीन पर दूसरी बार आना और 1000 साल तौर पर बादशाही करना। और फिर 13वीं आयत में हमने देखा उसने अपने नौकरों में से यानी के हर वो बेटी बेटा है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो उसके अपने कहलाते हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें 1 करिन्थियों उसका 6वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत में इस बात का बयान देती है कि तुम खुदा का मकदस हो और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और यहां पर ये नौकर जो कौन है, अपने नौकर यानी के उन लोगों की तरफ इशारा है जिन्होंने यीशु मसीह को اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، یسوع مسیح کی بلاحٹ، یسوع مسیح کی آواز کو سنا، جیسا کہ بائبل مقدس پہلا یوحنا اس کا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت میں کہتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی کہ اس کے خاندان کے اپنے لوگ اس کی ملکیت بننے کا کیا بخشا، حق بخشا، استحقاق بخشا. یہ بڑا حق ہر اس ایماندار کو حاصل ہوا. سو یہاں پر اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو، یہ ایمانداروں کی طرف حوالہ ہے، ایمانداروں سے طرف اشارہ ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو قبول کیا، اور انہیں بلا کر کیا کیا، 10 اشرفیاں دی، ان 10 نوکروں کو 10 اشرفیاں دی. یہاں پر ہم نے سیکھا اور اس پر اور گہرے طور پر سیکھیں گے، 10 اشرفیاں وہ 40 روحانی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم بہت جلد سیکھیں گے جیسے ہی اس تمثیل کو ختم کریں گے. یہ وہ 40 نعمتیں ہیں جو ایمانداروں کو نجات پانے پر ملتی ہیں، جیسا کہتے ہیں کہ یہ وہ ازار ہیں جس سے آپ مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں. مسیحی زندگی میں آنے والے ان سارے اتار چڑھا یعنی کہ دکھ، مصیبت، تکلیف، اپنوں سے دکھ اٹھانا، غیروں سے دکھ اٹھانا، ہمارے مخالف سے دکھ اٹھانا، دنیا میں مشکلات سے دو چار ہونا، ان ساری مصیبتوں میں، ان ساری جلتی ہوئی آگ کی وادیوں میں سے گزرتے ہوئے، ان 10 شرفیوں سے مراد وہ 40 نعمتیں، اور اس کے بعد اور بہت سی نعمتیں ہیں، اور شخصی طور پر آپ کو خدا کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے مسیحی زندگی گزارنے کے لیے روح القدس کی طرف سے. سو یہ وہ تمام برکتیں ہیں جو ایمانداروں کو دی گئیں، اور برکتیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا کہ بس برکتیں دی ہیں کہ بات ختم ہو گئی. اگلے حصہ میں کیا لکھا ہے 13 آیت کے، انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا، یعنی کہ یہ ہر ایک ایماندار سے خداوند کا کیا ہے، اظہار ہے، خداوند کا کیا ہے، حکم ہے، خداوند کی کیا ہے، تمام ایمانداروں کے لیے ذمہ داری ہے، ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. یہاں پر ہم جو واپس آنے تک لین دین کو دیکھتے ہیں، یہ یسوع مسیح دوسری آمد سے پہلے، یسوع مسیح آسمان پر آئے گا جب کلیسی آسمان پر اٹھائی جائے گی. سو وہاں پر ایمانداروں کو کیا کہا گیا ہے کہ میرے واپس آنے تک، جب آپ اس زمین سے اٹھائے جائیں گے، جب بہت سے ایماندار یعنی کہ پوری دنیا میں جو مسیحی ایماندار ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، وہ گمشدہ ہو جائیں گے، وہ لاپتہ ہو جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. یہ ہے یسوع مسیح کی کیا کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی تخت عدالت، یعنی کہ ہوا میں یسوع مسیح آئے گا، آسمان پر ہی ہوگا، اور مردہ اور زندہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے آسمان پر. سو یہ ہے یسوع مسیح کا واپس آنا. اس واپس آنا میں یسوع مسیح زمین پر نہیں اترے گا، بلکہ زمین کے سب لوگ جو کہ ایماندار، صرف اور صرف ایماندار اٹھا لیے جائیں گے. اور کیا کہا ہے، میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. جب یسوع مسیح آئے گا، جو آج آپ کو یا ہر ایک ایماندار کو نعمتیں حاصل ہے، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح پوچھے گا کہ تم نے ان تمام نعمتوں برکتوں سے جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے کس طرح گزاری ہے. سو واپس آنے تک لین دین کرنا سے مراد ہے مسیحی زندگی کو سیکھنا، گزارنا اور اس میں قائم رہنا. اور اس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا، سٹ، واک، سٹینڈ، یعنی کہ بیٹھ کر سیکھنا، پھر مسیحی زندگی گزارنا، اور پھر جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے، مسیح میں قائم رہنا. آج ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے اسی حوالہ سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ مسیح یسوع میں شاہی کاہن ہیں. پہلا جو بڑا آپ کو انوکھا حق یا اختیار دیا گیا ہے कि आप मसीह में शाही काहिन हैं। दूसरी बात, आप मसीह में शाही एलची हैं। ये दो बड़े हक आपको दिए गए हैं और इनके पीछे कौन सी बात है? शाही काहिन से मुराद आप जब चाहे खुदा से बात कर सकते हैं। आपका शख्सी तल्लक किस तरह? बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से, दुआ करने से। खुदा की आवाज को आप किस तरह सुन सकते हैं? बाइबल मुकद्दस को। पास्टर के वसीला से, मुबशरान के वसीला से और खुदा के खादमों के वसीला से। और सबसे उम्दा जो जरिया है खुदा की आवाज को सुनने का, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से। जब आप दुआ करेंगे, आप बात करेंगे और खुदा आपसे बात करेगा अपने कलाम के वसीला से। और ये क्या है? शाही काहिनों का किया क्या है? हक है। आप शाही काहिन है, खुदा आपसे बात करता है, आपका शख्सी तल्लक। और शाही एलची से मुराद यानी कि वो शख्स, वो बेटी, वो बेटा जो किसी की नुमाइंदगी करता है। जैसे कि मुल्की शाही, मुल्की काहिन को देख लें, माफ कीजिए, मुल्की एलची को देख लीजिए। वो दूसरे मुल्कों में मुल्क की नुमाइंदगी करता है। आप आसमान से भेजे गए हैं खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करने के लिए। मिसाल के तौर पर जब इलेक्शन आते हैं तो जो मेंबर खड़े होते हैं, उनका मुख्तलिफ निशान होता है। मिसाल के तौर पर एक टीम या एक जो इलेक्शन के भाई होते हैं या बहन है, कोई भी है, अगर वो खड़ी हो तो अगर उसको निशान मिले हुके का, तो फिर उसके जितने भी नुमाइंदे होते हैं, आप जानते हैं जब इलेक्शन आता है तो किस तरह वो अपने निशान की नुमाइंदगी करते हैं कि आप इसे वोट दें, आपके लिए ये किया जाएगा, आपको नौकरियां वगैरह बहुत सी सहूलतें दी जाएंगी। और इसी तरह दूसरी पार्टी भी अगर उनका लोटा या कोई और वगैरह निशान हो तो वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं कि आप इसे वोट दें तो आपको हम अच्छी सहूलतें देंगे। लेकिन याद रखें कि वो आरजी सहूलतें हैं, वो अपने वादों से फिर जाते हैं। लेकिन आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसकी नुमाइंदगी करनी है, जिसके लिए जिंदगी बसर करनी है, जिसके बारे में बताना है, वो कौन है? खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो अपने वादों से फिरता नहीं है, जिसका हर एक लफ्ज, हर एक कलमा जो उसके मुंह से निकलता है वो पाक, उसका हर एक सुखन जो क्या है वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं के झूठ बोले और खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। सो आप शाही एलची हैं, दुनिया के एलची नहीं, शाही एलची। आपको कौन सा निशान दिया गया है? मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों, उसका 5 बाप, उसकी 20वीं आयत आपके लिए पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, हम मसीह के एलची हैं। हर एक ईमानदार को बात कही जा रही है। पौलुस रसूल यहां पर अपने से मुतलका बात कर रहा है, करंथियों के कलीसिया से, लेकिन आज ये हर एक ईमानदार के लिए है जो यीशु मसीह में है। हम मसीह के एलची हैं, गो हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। आपका निशान क्या है? आपने किसकी नुमाइंदगी, किसके लिए मिन्नत, किसके लिए दरख्वास्त, या किसके लिए लोगों को क्या करना है, बताना है? वो आपका निशान क्या है? कि यीशु मसीह ने सलीब पर आपके गुनाहों के लिए जान दी है। यीशु मसीह आपके लिए मुआ ताकि आप उस गुनाह से, उस मौत से, उस रूहानी रूहानी बिछोड़े से जो आप में पाया जाता था वो बिछोड़ा दूर हो जाए, वो तरीकी दूर हो जाए और आप मसीह के साथ क्या करें, सुलह कर सकें। सो आपका जो पैगाम है, आपने जो पैगाम वो देना है सुलह का पैगाम, यानी कि खुदा और इंसान के दरमियान। इलेक्शन 5 साल के लिए, 3 साल के लिए और उनके वादे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये दुनिया की बात है। लेकिन हम आप जो ईमानदार जो मसीह की नुमाइंदगी करते हैं, आपका पैगाम यह क्या है कि यीशु मसीह वो वाहिद रास्ता है जो खुदा तक पहुंचाता है और उसका कोई भी वादा बदल नहीं सकता, और साथ साथ वो हमें जो भी कहता है उसको वो पूरा करता है। जैसे उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा, कैसे भी हालात हो जाएं, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया की हफाजत, दुनिया की सहूलत, दुनिया का वादा खत्म हो जाता है क्योंकि दुनिया आरजी है लेकिन खुदा अबदी है। सो आपको जो पैगाम दिया गया है वो क्या है, मसीह की नुमाइंदगी करना। सो मसीह की नुमाइंदगी दरअसल क्या है, एक रूहानी जंग है, ये रूहानी जिंदगी है, ये वो रूहानी जिंदगी है जो मसीह के लिए गुजारनी है, और ये आप वो पोशीदा जंग लड़ रहे हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता। आप जानते हैं और या फिर हर वो ईमानदार जो उस ईमान का हिस्सेदार है, यानी कि मसीह को जानता है, वो ही जानता है इस रूहानी जंग के बारे में कि उसकी तजर्बाई जिंदगी कैसी है। जैसा हमने पिछले दिनों में सीखा कि जबूर 144 उसकी पहली आयत में हमने देखा था कि किस तरह दाऊद बादशाह की जंग क्या थी, इंसानी जंग थी, वो फौजों के साथ, वो हुकूमतों के साथ, उस वक्त के लोगों के साथ वो लड़ता हुआ नजर आता है एक बादशाह की हैसियत से, और वो क्या कहता है कि ऐ खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। वो खुदावंद को मुबारक, धन भाग, खुदावंद की शुक्रगुजारी, और खुदावंद को कहता है कि तेरे तू ही मुबारक है, तू ही ताजीम है, क्योंकि तू ही ताजीम के लायक है, मेरी चट्टान यानी कि मेरा जोर है। क्यों वो कहता है, क्योंकि खुदावंद खुदा क्या करता है, उसके हाथों को जंग करना और उसकी उंगलियों को लड़ना सिखाता है, सिखाता है। वहां पर दाऊद बादशाह सीखता है और उसने सीखा है और वो मुसलसल तौर पर सीख रहा है ताकि वो उस जंग को लड़े। हमें भी मुसलसल हर रोज सीखने की जरूरत है। सो यही बात खुदावंद का बंदा लूका तबीब कहता है 13वीं आयत में, दूसरे हिस्सा में, और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक, मेरे वापस यानी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वापस आने तक, ये आज तमाम लोगों के लिए है कि मेरे वापस आने तक जो नेहमतें, जो बरकतें, जो अजाज, जो हक, जो कुदरत और जो नाम तुम्हें और जो खिदमत और जो तुम्हें हुक्मनामा मैंने दिया है कि तुम मेरे एलची हो, जाकर दुनिया में मेरी मनादी करो और उन्हें बताओ कि मेरा वादा ला तब्दील है, कि मेरा वादा ये है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा वादा ये है कि मेरी बादशाही 5 या 3 साल की नहीं है, मेरी बादशाही वो कहता है अबदी है, आसमान और जमीन उसने कहा टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सो आप उस बादशाह यहोवा यीशु की नुमाइंदगी करने वाले हैं। सो यहां पर लूका तबीब यही बात करता है कि यीशु ने कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेन देन क्या है, आपकी मुकम्मल मसीही जिंदगी, और इसे क्या कहते हैं, सिट वॉक स्टैंड। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों के खत में से आज हम देखेंगे चंद एक सच्चाइयां। जैसा मैंने आपको बहुत पहले भी सिखाया और हम इसी पर सीख रहे हैं कि हमें क्यों, जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह तालब है सीखने का और उसने सीखा खुदावंद से जंग लड़ना ताकि अपने दुश्मनों पर गालब आए। आपके दुश्मन पोशीदा हैं, आपके दुश्मन खून और गोश्त के नहीं बल्कि शरारत की वो रूहानी फौजें हैं। शरारत की वो रूहानी क्या हैं, तासीरें हैं जो नाफरमानी के फर्जंद की पैरवी करती हैं, उनके साथ हैं। सो इसीलिए ईमानदार होते हुए हमें सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सिटका जैसे मैंने आपको मतलब बताया था कि मसीह खुदावन में आपकी और मेरी हालत, आपका और मेरा मकाम, आपका दर्जा, आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है, आप क्यों इस जमीन पर हैं, आप जिंदा क्यों इस जमीन पर हैं, आपकी नाम के साथ कौन सा नाम जुड़ गया है, आप कौन सी हैसियत रखते हैं, आपका आपका इस दुनिया में क्या मकसद है, और उस मकसद को जानने के लिए जरूरी है सीखना। और जैसा कि हम सीख रहे हैं, मेरे साथ इससे पहले कि हम इफिसियों के खत में जाएं, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाप उसकी 30वीं आयत। ये वो बुनियादी बातें हैं जो बहुत ही जरूरी है सीखनी। यूहन्ना की अंजील 19वां बाप उसकी 30वीं आयत, यहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, उस दुख को उठा रहा है। और यहां पर हम देखेंगे 30वीं आयत में क्या लिखा है, पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तमाम हुआ, क्या तमाम हुआ, यीशु मसीह ने वो तमाम काम जो करना जरूरी था वो काम मुकम्मल कर दिया। और उसने क्या की, यहां पर फतह हासिल की। और ये फतह क्या है, मौत पर फतह, ये फतह जो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ही जान देने के बायस होनी थी, और यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दे दी सर झुकाकर। और उससे पहले कहा कि तमाम हुआ, यानी कि इबलीस हार गया, उसका सर कुचला गया, मौत का डंग जाता रहा, और मौत जो के आदमियों और खुदा के दरमियान थी वो मौत दूर हो गई। और ये यीशु मसीह के बायस जो के दूसरा आदम है जिंदगी आई। और यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, और तमाम होने के से मुराद क्या है कि हर वो काम की चीज, हर वो बात, हर वो जरूरी जरूरत की चीज जो हमें रूहानी जंग जीतने के लिए जरूरी थी, यीशु मसीह ने वो रूहानी जंग मुकम्मल कर दी। यीशु मसीह ने वो फतह बनीनू इंसान को दे दी। और ये फतह ईमानदार जब हम बनते हैं, हमें उस ईमानदार हमें उसमें ईमानदार होते हुए ये क्या होती है, फतह हासिल होती है। यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। और इफिसियों पहला बाप उसकी 20वीं आयत में वहां पर कहा गया तमाम हुआ, और यहां पर तमाम होने के बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। और 20वीं आयत में लिखा है जो उसने यानी के खुदा बाप ने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाही तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया। वहां पर यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, और यहां पर खुदा बाप खुदा बेटे ने उस खुदा रूहुल कुद्दस ने खुदा बेटे को मुर्दों में से जलाया और आसमानी मकामों पर अपने दाहें हाथ बिठा दिया। और ये यीशु मसीह का मुकाम है कि वहां पर वो बैठा हुआ है। सो आपकी मुकामी हालत क्या है, आप मसीह यीशु में क्या हैं, आप रूहानी तौर पर कौन सा मुकाम रखते हैं, आपको उसमें कौन सी शान और शौकत और कुदरत और इख्तियारात और दर्जे हासिल हैं। इफिसियों 2 बाप उसकी 6वीं आयत, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया हर एक उस बेटे बेटी को जो इस मौजूदा दौर में शरारत की उन रूहानी फौजों के गिरफ्तारी में था, जो अबलीस का मुल्क का शहरी था, उसकी शहरियत को काट कर यीशु मसीह ने क्या किया, अपना नाम हमें दे दिया। और क्या किया, जैसे वो आसमानों पर जा बैठा, हमें भी मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। उसने हमें इसीलिए आसमानी मुकामों पर बिठाया है कि इस जमीन पर रहते हुए उस आसमानी मुकाम के बारे में जाने और उसकी क्या करें, नुमाइंदगी करें जमीन पर। और पहले तीन बाप इसी के बारे में हैं कि हम खुदावंद में कौन सा दर्जा रखते हैं। हमें उसने शाही एलची बनाया है, हमें उसे उसमें क्या दर्जा हासिल है, हमारा दर्जा ये कि हम उसके ले पालक बेटे, उसके खून खरीदे, उसके चुनीदा लोग और उसकी तमाम नेहमतों और बरकतों के वारस। लेकिन जरूरत है, इन्हें सीखना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए पालूस रसूल तीन बाप उसकी चौदहवीं आयत में कहता है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। ये आपकी हालत है अगर जब आप जैसा कि आप ईमानदार हैं। पालूस रसूल कहता है आसमान और जमीन का हर एक खानदान उसके नाम से क्या है, नामजद है, कि वो अपने जलाल के जलाल की दौलत के मुआफक उन्हें तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। क्यों? ताकि वो चाहता है कि आप मसीह की लंबाई चौड़ाई गहराई और उसे जान सकें। और ये है आपकी मसीह में हालत कि आपको अपने खुदावंद को जानने की जरूरत है। जैसा जैसा कि दुनिया के जब इलेक्शन होते हैं तो उनके डेरे मगन रहते हैं जब तक इलेक्शन रहता है, इसी तरह आपको भी जब तक आप इस जमीन पर हैं, जब तक मसीह खुदावंद वापस नहीं आता आपको आसमान पर उठाने के लिए, आपको उसके कदमों से जुड़े रहने की जरूरत है। जैसे भेड़ अपने चरवाहे के पांव में उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमें भी मसीह के साथ जुड़े रहने की जरूरत है ताकि अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाएं और मसीह में मुसलसल तौर पर जड़ पकड़ते जाएं। ये है सेट के आप अपनी हालत को जाने कि आप इस मुल्क में इस दुनियावी यानी कि इस दुनिया में क्या भेजे गए हैं नुमाइंदगी करने के लिए, और नुमाइंदगी करने के लिए भेजे गए हैं। और दूसरी बात क्या है, वाक यानी के इस दुनिया में हमारी जिंदगी को बसर करना, जिंदगी गुजारना, हमारी बुलाहट क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, पहले एलची के बारे में सीखना, फिर एलची की जिंदगी बसर करना, यानी के मोहब्बत फरोतनी और एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक रूह में बंधे रहना और खुदावंद के पैगाम को क्या करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये ही आपकी मसीह में बलाहट है। और पालूस रसूल चार बाप उसकी पहली आयत में कहता है, मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आपकी बुलाहट क्या है, आप मसीह में एलची हैं और जानने की जरूरत है कि इस मसीही एलची की नुमाइंदगी क्या है। पहले सीखना, उसके बाद फिर उसे इस्तेमाल करना यानी कि जिंदगी गुजारना। और एलची की जिंदगी में क्या क्या बातें आती हैं, बहुत ज्यादा सच्चाइयां हैं। वक्त के लिहाज से हम जल्द ही थोड़े से वक्त के लिहाज से हम थोड़ा सा ही सीखेंगे। एलची से मुराद यानी के नूर में चलना, नूर की नुमाइंदगी करना, जिसमें हर तरह की क्या है, उन सारी सारी بری باتوں سے کیا کرنا ہے، ان سے واقف ہونا ہے کہ کس طرح ان پر غالب آئیں. پہلی 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ان بخششوں کو جو اس نے بخشی گئی ہیں ان کو استعمال کرنا، ان میں زندگی گزارنا، اور نور کے فرزند بن کے، خداوند یسوع مسیح کی مانند خدا کے فرزند بن کے نور کی نمائندگی کرنی ہے. اور 5 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. کن کے کاموں میں؟ بت پرستی، جادوگری، ناپاکی، لالچ، جھوٹ، فریب، ٹھٹھے بازی، اور ان باتوں میں ہمیں نور کی نمائندگی نہیں کرنی، بلکہ ان باتوں میں ہمیں نہیں جینا بلکہ نور کی نمائندگی کرنی. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو تاریکی کی ہیں. سو کیا لکھا ہے؟ پس ان کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. نور کے فرزندوں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے. اور پھر 15 آیت میں بھی پالوس رسول پھر یہی کہتا ہے، پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو. اور وقت کو غنیمت جانو، وقت کو بہت ہی اہم جاننے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج بہت سے لوگ اپنی اپنی موج میں، اپنی اپنی مرضی میں مگن ہیں، لیکن وقت کو غنیمت نہیں جا رہے. وہ اپنے آپ کے اپنی مرضی میں زندگی گزار رہے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنی زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ضائع کر رہے ہیں. سو پالوس رسول کہتا ہے کہ دناؤں کی مانند چلو، روح سے معمور ہوتے جاؤ. پھر کہتا ہے کہ تمہاری زندگی جو اس زمین پر مسیحی ایلچی ہوتے ہوئے تمہیں گزارنی ہے، اس میں اگر تم شوہر ہو، اگر تم بیوی ہو، اگر تم شوہر یا بیوی ہو تو شوہر اپنی بیوی سے جیسے مسیح نے محبت کی ہے، مسیح سے ایسی محبت کرے. بیوی اپنے خاوند سے جیسے خداوند کی تابع دار ہے ویسے ہی اپنے خاوند کی کیا ہو، تابع دار ہو. اور پھر 6 باب میں یہ واقع کا حصہ چل رہا ہے. 6 باب میں کیا کہا گیا ہے کہ اے فرزندو، یعنی کہ اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اپنے ماں باپ کے تابع داری کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسیحی ایلچی کی زندگی کا حصہ ہے، نور کی نمائندگی کرتے ہوئے، نور میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نوکر ہیں یا کہیں پر کام کرتے ہیں تو اپنے مالک کی کیا کرنی ہے، صاف دلی سے خدمت کرنی ہے جیسا کہ آپ مسیح کی کرتے ہیں، تاکہ آپ کے زندگی گزارنے سے، آپ کی روحانی اور نورانی زندگی سے، اگر آپ کا مالک اچھا نہیں تو وہ آپ کے رویے سے جانے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا رویہ اور آپ کی زندگی کیا بتانے والے بنے گی. نور کے فرزند، خواب غلام ہیں، خواب مالک ہیں، خواب بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، بیٹوں کے لیے کیا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، بیٹیوں کے لیے بھی کیا ہے، فرما برداری کرنا. اور باپ کو کیا کی گئی، ماں باپ کو کیا تربیت، کیا نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کیا کرو، کلام خدا میں سے نصیحت کرو. اور یہ ہے واک جو کہ بہت ہی ضروری ہے جاننا. یہ صرف آپ کو چھوٹا سا اشتہار جو بڑی تصویر دکھا رہا ہوں. اور پھر اگلا حصہ آتا ہے سٹینڈ، یعنی کہ مسیح خداوند میں قائم رہنا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اس میں سے اس کا انکار نہیں کرنا اور اپنے کیے ہوئے اقرار سے نہیں ٹلنا. اور یہ ہے مسیح میں کیا رہنا، قائم رہنا. کس کے مخالف کیا لکھا گیا ہے، ببلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کے مخالفت میں قائم رہنا اور اس کا مقابلہ کرنا. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے پس ہم کمر سچائی سے اپنی کمر کسے، 14 آیت میں لکھا ہے، اور راسبازی کا بختر لگائے، یعنی کہ یسوع مسیح سچائی سے کمر کسنے سے مراد یعنی کہ بائبل مقدس کی سچائیوں کو تھامے رہنا، راسبازی کا بختر یعنی کہ یسوع مسیح کی راسبازی میں زندگی گزارنا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہننا یعنی کہ ایلچی کی خدمت کو مسلسل طور پر کرتے رہنا۔ کیا ہم نے پڑھا تھا دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 20 آیت میں کہ خدا ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے کہ تم خدا سے صلح کر لو، یعنی کہ صلح یعنی کہ ایلچی کے جوتے پہنے رہنا۔ اور پھر کیا لکھا ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر پر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام۔ یہ سب باتیں کہاں سے آئیں گی، یہ سب کردار ہم کس طرح جان پائیں گے، خدا کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ ہر وقت ہر طرح روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو اور سب کے واسطے دعا کیا کرو۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا، یعنی کہ جاننے کی ضرورت ہے ہم کون ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اور اس زمین پر قائم رہنا ہے اس سچائی کے لیے تاکہ جب وہ آئے تو وہ ہمیں کیا دے، بہت بڑا اجر دے۔ اور یہ بہت بڑیاں نعمتیں اس نے اسی لیے تیار کی ہے کہ آپ سب اس سے سیر ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت مبارک ہیں جو ہر صبح اپنا وقت نکال کر اس کے کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے مسیحی ایماندار آج سست ہوئے پہ ہیں، جن کے لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ اے سونے والوں جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد چھوڑ دیا ہے، اپنی راہوں سے پھر گئے ہیں، اس غم توڑ اس کھوئی ہوئی اور غم توڑ دم توڑتی ہوئی دنیا کے کیا بن گئے ہیں، پھر مسافر بن گئے ہیں، انہیں پالوس رسول کہتا ہے جاگو۔ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے حضور اپنی کلیسیا کے لیے بیداری، نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے جو تاریکی کی راہوں پر چل پڑے ہیں، خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی حالت کو جانے۔ آئے ہم خداوند کے حضور چکیں تاکہ وہ مسیح کی طرف پھریں اور وہ اپنی زندگی میں جو ان کا مقصد خدا نے دیا ہے اسے جاننے والے بنے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور پاک روح تو ہم سب کی ضرورت کے لیے جو آج ہمیں ضرورت ہے خداوند تیرے کلام میں سے حوصلہ افزائی، حکمت دنائی، خداوند ہماری رہنمائی کر، آج کا جو بویا ہوا کلام کثرت سے 100 گنا پھل لائے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔